उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। दोस्तों, प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन जी की इन पंक्तियों के भाव को सार्थक कर दिया है उस शख्सियत ने जिनको आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस अधिकारी रहीं डॉक्टर सत्या सिंह जी के नाम को कौन नहीं जानता है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से 2017 में उन्हें देवी अवार्ड से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया तो मंच से ही योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सारे लड़के और लड़कियां अपने को सुरक्षित पाते हैं क्योंकि उनकी सत्या दीदी उनके साथ हैं। इस अवार्ड के लिए जब सर्वे हुआ तो जो टाइटल उनको मिला उससे ही उनके व्यक्तित्व और उन्हें मिलने वाले प्यार और सम्मान को समझा जा सकता है और वो टाइटल था अक्का राखी दीदी। ऐसे ही नहीं, आज इतने लोगों की वे आदर्श हैं, बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और अभी मैंने कुंवर बेचैन जी की जो पंक्तियां आपको सुनाई, बिल्कुल वैसे ही उनके ऊपर जितनी भी बाधाएं आईं, हर बाधा ने उन्हें और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ही उठाया। ईमानदार महिला पुलिस अधिकारी और समाज की एक जानी मानी हस्ती सत्या सिंह जी के माता पिता ने उनके बचपन में ही दुनिया को छोड़ दिया। अपनी मेहनत और कह सकते हैं कि कुछ करने के जुनून ने ही उनको आज यहां तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी लड़कियां उन्हें ये कहकर राखी बांधती हैं कि वो उनकी हिफाजत करती हैं। आपको सम्मान स्वरूप मिले मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कारों से एक कमरा भरा हुआ है। आप ताइक्वांडो चैंपियन भी हैं। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर सत्या सिंह जी ने लेखन कार्य आरंभ किया। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपका कहना है कि अब साहित्य के द्वारा समाज की सेवा करनी है। भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार आपकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है। संघर्षशील व्यक्ति के लिए जीवन एक कभी ना समाप्त होने वाले समारोह की तरह है और इस बात का प्रमाण सत्या जी को देखकर अपने आप ही हो जाता है। मैंने जब भी उन्हें देखा है उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट को पाया है और उसके साथ ही उनके गौरवपूर्ण चेहरे पर स्नेह और वात्सल्य के भाव को हमेशा ही देखा जा सकता है। तभी तो दोस्तों वे हम सभी की प्यारी अक्का राखी दीदी हैं। ये जज्बा है सकारात्मक ऊर्जा का। सच में ऐसे ही लोग मिसाल होते हैं, उन्हें देखकर, सुनकर, मिलकर एक ही बात कही जा सकती है, मंजिल पर पहुंचना नहीं कोई कमाल, मंजिल पर पहुंचकर ठहरना कमाल होता है। तो दोस्तों, अब और इंतजार नहीं, बस मिलते हैं सत्या सिंह जी से। हाँ जी मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
थैंक यू भावना।
मैम, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बोलूंगी आज कि 2-3 दिन से जब से हमें ये पता चला कि आप हमारे कार्यक्रम में आ रहे हो तो तब से आप यकीन करो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी खुशी मिल रही है जी।
भावना, ये आपका प्यार है
जी मैम,
जो आपको
आपका
ये महसूस
प्यार
करा रहा है।
जी जी मैम, जब
हमेशा
भी मैं आपसे मैम हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर देखती हूँ तो उसका कोई राज बता दो सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में।
भावना, बस यही है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, तो बस यही राज है। और मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है।
ओहो अच्छा। जी पॉजिटिव तो बहुत से लोगों जी मैम,
लेकिन वो बोलते हैं ना कि आप कितना भी मेकअप कर लो या कितना भी आउटफिट पहन लो, लेकिन जब तक
जी
कि आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, वो आपका कोई भी आउटफिट या जो भी श्रृंगार आपका पूरा नहीं होता है। तो
बिल्कुल मैम,
सबसे जरूरी ये है।
बिल्कुल। ये चीज तो मतलब हम लोग आपकी देखते हैं तो सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप हर परिस्थिति में एकदम मुस्कुराते हुए मिलते हो, तो उससे हम लोगों के अंदर एकदम वाकई में पॉजिटिव एनर्जी एकदम आ जाती है।
थैंक यू भावना, अगर ऐसा लगता
बिल्कुल
है तो।
लगता है मैम, मुझे ही नहीं लगता, बहुतों को लगता है, तभी आप सबकी प्यारी अक्का राखी दीदी हो।
हाँ ये तो है। और
जी जी
मुझे, मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है,
जी
और
बिल्कुल
दिन पर दिन कोई ना कोई एक फैमिली में मेरी बढ़ता ही जाता है। तो
बिल्कुल
इसलिए जितनी भी मैं बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बुआ हूँ, तो ये सब बस आप लोग के प्यार की बदौलत ही है।
जी मैम, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं अगर वहां पर आप होते हो तो एकदम ऐसा लगता है कि वाकई कोई हमारे साथ है, और ये फीलिंग जो है वो
हाँ,
किसी किसी के लिए आ पाती है। जी जी मैम
इसीलिए तो मैं सबके साथ जादू की झप्पी लेती हूँ, ताकि जो
बिल्कुल
एक दूसरे के पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं ना, वो मुझे भी मिलता है। अच्छे
और आप भी देते हो
अच्छे
दूसरे
लोगों से, आप
से।
जैसे लोग।
जी मैम बिल्कुल
हाँ, मेरे पास जो होता है वो मैं हमेशा देती हूँ और देने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव चीजें भी लेने में कोई संकोच नहीं है, सीखने में कोई संकोच नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो तो वही कोई शिक्षा दे, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल जाती है, जो मैं हमेशा लेने के लिए तैयार रहती हूँ।
जी मैम, तभी आप इस जगह पर हो आज। शुरुआत
जी
में मैम
थैंक यू।
अपने कुछ शुरुआती जीवन के बारे में बताना चाहोगे आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जीवन एक मिसाल है, तो हमें पता चलना चाहिए। हम लोग तो काफी कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे श्रोता बहुत से दूसरे राज्यों के भी हैं दूर दूर तक, तो मैं चाहती हूँ कि पता चलना चाहिए कि कैसे आप मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों से भी अपनी जंग लड़ रहे हैं।
हाँ भावना, मैं बहुत छोटे शहर से, क्या गांव की रहने वाली हूँ,
जी
और मैं करीब 1.5 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी,
जी
और उसके बाद करीब इंटर फाइनल में थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी।
ओफो
तो मेरे दादा दादी ने मुझे पाला था, और मैं पढ़ने में थोड़ी ठीक थी, लेकिन हम लोग चूंकि गांव के रहने वाले थे तो वहां के मेरे जो और घर के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, तो अक्सर ये पढ़ाते थे मेरे फादर, तो कहा जाता था कि ये बबुआ है, पढ़ के नौकरी करेंगी। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास, पूरे मतलब जिले में मैं पहली बार, यही था कि मैं फर्स्ट क्लास आया था मेरा,
वाह
और 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलती गई, और
जी
स्कॉलरशिप मिलने के बाद फिर मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आई, और यहाँ से मैंने मनोविज्ञान में एमए किया, और उसी दौरान मेरी हॉस्टल में रहते थे तो मेरी रूममेट थी एक, रमा दी, तो उनके
जी
ब्रदर वगैरह ये पुलिस में निकला था सब इंस्पेक्टर्स के लिए,
जी
तो उन लोगों ने फॉर्म भरा था तो मेरा भी भर दिया था, तो करीब 8-9 लोग थे जो एग्जाम दिए थे, किसी का नहीं हुआ, मेरा हो गया। लेकिन
बताइए मैम।
बाद में उसमें से बहुत सारे लोगों को और अच्छी जगह हुआ, लेकिन मेरा इसमें हो गया।
तो मैम आपकी इच्छा थी पुलिस में जाने की कि बस एक ऐसे फॉर्म भरा गया और
नहीं,
आप आ गए इसमें।
ऐसे ही एकदम ऐसे ही भावना, कभी इच्छा भी नहीं थी, दूर दूर तक पुलिस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ट्रेनिंग में जाने के बाद पूरे 6 महीने तक तो चल नहीं पाते थे, ऐसा होता था हम लोग को, जो हम लोग के पीटीआई थे वो इतना दौड़ाते थे, इतना 440 के 5 चक्कर लगवाते थे, तो हम लोग को ये लगता था कि जैसे जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए हैं। इवन घर आने
ओफो
के लिए अगर ट्रेन पे चढ़ना होता था तो ट्रेन पे चढ़ने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद पुलिस पुलिस में आए भर 24 जनवरी 84 को ज्वाइन किया था बनारस में,
वाह,
तब से शुरू हुई।
जी मैम,
हाँ
और कुछ बता चाहे आप उस दौर के बारे में जब आप ये
अरे
महिला
उस समय
सम्मान प्रकोष्ठ में रही हैं? उस समय का तो हम आपका जानते हैं, आपका इतना नाम था कि वाकई में लखनऊ, क्या मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सारे लोग, लड़कियां खासकर, सोचती थी कि हम सुरक्षित हैं, और एक सुकून रहता था उनके घर वालों को भी। आपका दौर तो बहुत अच्छा बीता मैम, यहाँ पर स्वर्णिम दौर था एकदम, उसके
वो
बारे
अभी
में
भी है
बताएं।
भावना, अभी भी है। मेरा
जी
मोबाइल 24 घंटे ऑन रहता है और रात को 2 बजे भी लोगों को फोन आता है। तो लखनऊ में 112 में, पहले 100 था, अब 112 में कम से कम 20-25 तो मेरी ही कंप्लेंट नोट होती है लोगों की हेल्प के लिए। और जो
जी
आप पहले दौर का पूछ रहे हो, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो
जी
महिलाओं का बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं डरती नहीं थी। मैं भेलूपुर में ज्वाइन किया मैंने अंडर ट्रेनिंग के बाद, तो एक इंसिडेंट मैं दो आपको बता रही हूँ।
जी
तो
मैम, बिल्कुल
एक
बताएं।
काफी एजेड से सर थे, एसएसआई,
जी
तो जैसे मतलब उनके साथ नौकरी करनी होती थी। तो हम लोग जाते थे, पुलिस लाइन थोड़ी दूर था यहाँ पे, तो वहां पे
जी
शुक्रवार को एक वो होता था, हम लोगों को जो भी काम करते थे उसको वहां पे बताना होता था। तो मेरे पास स्कूटर थी तो वो भी जाते थे पीछे बिठा के, मैं उनको लेके जाती थी। एक बार बाय द
जी
वे क्या हुआ कि मैं उनको स्कूटर पे बिठा के लेके जा रही थी, तो कुछ दूर पहुंचने के बाद बोलते हैं अगर मेरी वाइफ देख ले तो मतलब क्या करे कि बैठे। मैंने क्या किया, स्कूटर रोका और उनको बोला उतरिए, और उनको वहीं उतार के और चले गए।
ये तो
उसके अरे
बहुत अच्छा किया मैम आपने।
सुनिए, तो उसके बाद मेरी पेशी हुई, मेरे सीओ थे मिस्टर एमके बिश्नोई, उनके सामने कि आप मतलब ऐसे कि इनके साथ, हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, हमने कहा इनको इतना सेंस नहीं है कि एक तो मैं बिठा के स्कूटर पे ले जा रही हूँ और उस पे वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमने कहा मैं तो नहीं ले जाऊंगी। फिर किसी को
जी
कोई जवाब देते नहीं बना। उसके बाद भावना क्या हुआ कि एक जैसे कि कभी कभी ये होता था ना, यूनिफॉर्म में नहीं रहते थे, तो एक बार मैं यूनिफॉर्म में
जी
नहीं थी और मैंने स्कूटर भी नहीं लिया था प्राइवेट में, तो मैं जा रही थी उस समय महमूरगंज चौकी पे मेरी पोस्टिंग थी। तो रास्ते में पोस्टिंग
बनारस।
बनारस, तो यहाँ पे थोड़ा
जी
भैया टाइप फेमस है, तो मैं
जी
जा रही
जी
थी। तब तक एक चाय की दुकान थी ऐसी टपरी सी, तो उसपे से एक बड़ा ही कमेंट आया है, का हो, मतलब यहाँ का होता है का हो, मतलब छेड़ने वाली
जी
भाषा। तो चूंकि
जी
पुलिस में, चूंकि मैं पुलिस में थी तो थोड़ा तो लगा ही, मैंने रिक्शे वाले को बोला, हमने कहा रोको, और मैं रिक्शे से उतर गई। उतरने के बाद मैं वहां पे गई और मैंने उससे बोला कि क्या परेशानी है। अब वो लड़का खद्दर का कुर्ता पजामा पहने था, खड़ा हो गया, बोला आपको क्या परेशानी है। हमने कहा अभी बताते हैं। तो हमने
जी
रिक्शे वाले को बोला कि हमने कहा जाओ चौकी से, वो दो उनको दो सिपाही और उनको सर को बोलना कि मैं बुला रही हूँ। इतने में उसको ये लगा कि मैं पुलिस में हूं या कुछ हूँ, तो वो खड़ा हो गया उठ के और
जी
बोलता है मैं भी बुला के ले आता हूँ। हमने कहा नहीं, तुम चुपचाप बैठो यहीं पे। तो बोला कि नहीं, और उसकी स्कूटर खड़ी थी बगल में, तो वो
जी
जाके स्कूटर पे बैठा स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने चाबी उसमें से खींच ली। अच्छा, जब वो चाबी खींची तो उसने क्या किया कि मेरे हाथ से चाबी खींचने की कोशिश की, तो मैंने खींच के एक झापड़ मारा तो चाबी मेरे हाथ में रह गई, गुच्छा उसके हाथ में आ गया। तो जब नहीं
जी
मिली, हाँ, तो वो मुड़ के भागने की कोशिश किया और मैं पीछे से पकड़ने के लिए उसका कुर्ता पीछे से पकड़ा, तो मटके का कुर्ता था, ज्यादा पुराना रहा होगा, वो कुर्ते का बीच का हिस्सा मेरे हाथ में आया और वो भाग गया। अच्छा, इतने में ही
जी
हाँ थाने से सब लोग आ गए, जो मेरे सीनियर थे बघेल सर थे, और उन लोगों ने फिर देखा वो भागी गया था, तो स्कूटर देखी, तो स्कूटर पे कोई नंबर नहीं, कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ले जाके स्कूटर को लावारिस में दाखिल करा दिया। अच्छा, नेक्स्ट
जी
डे मेरी फिर पेशी हुई, वही सीओ थे मिस्टर एम के बिश्नोई, और बोलते हैं कि
जी
क्या है आपका कि आप रास्ते भर बवाल करती चलती हैं, कि आप वर्दी पहन के क्यों नहीं चलती। तो मैंने कहा कि
जी
सर,
जी
यहाँ पे मात्र 3 सब इंस्पेक्टर हैं पूरे बनारस में। हम क्या कितने लोग वर्दी पहन के चलेंगे? हम क्या मेरी बहनें हैं और लड़कियां हैं, कितनों की बहनें होंगी, हम क्या कितने लोग वर्दी पहन के चलेंगे? वो तो बोलते हैं कि आप
जी
नहीं जानती, वो कांग्रेस आई का नेता है और ये है वो है। जितना सुना सकते थे मुझे सुनाया, उसको बुलवाया और वो आया, मेरा पैर छुआ, पैर छू के वो निकल गया। उसकी स्कूटर उन्होंने दिलवा दी। उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने बोला कि मुझे जिले में नौकरी करनी ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ। फिर उसी समय लखनऊ में ये महिला सम्मान प्रकोष्ठ खुला था, महिला सहायता प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री थी सुशीला रोहतगी जी। नहीं,
जी
ये खुला
जी
था अप्रैल 1988 में। तो मैंने क्या
अच्छा
की कि लिख के एप्लीकेशन दी और 2.5 महीने की छुट्टी ले ली, पूरा जितनी ईएल थी, कि जब वहां पे होगा
जी
तभी मैं ज्वाइन करूंगी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर वहां हुआ और फिर मैंने ज्वाइन किया वहां पे। फिर वहां से तो पता ही है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में तैनात थी, और वहां से मतलब जो चाहती थी वो मैं कर सकती थी। कितने सारे,
जी वहां तो आपके पास
हाँ, कई
जी
केसेज ऐसे थे जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी, उन केसेज को दोबारा इन्वेस्टिगेट करके उसमें चार्जशीट लगी, कन्विक्शन हुआ, जेल गए। तो अच्छा रहा।
अब ये बताइए मैम, आपकी आप बनारस की जो बात कर रहे हो, मतलब समाज की बात देखो कि आप पुलिस में थे तो आपको वहां से अपनी छुट्टियां लेकर, और आपने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी और कहीं, तो एक आम लड़की का क्या हाल होता होगा? आप यहाँ से ये चीज सोचो, जैसा कि वो
एकदम
आपको कहते हैं वर्दी पहन के घूमो तुम, तो हर लड़की तो वर्दी पहन के नहीं घूमेगी ना।
एकदम एकदम सही कह रहे हो आप। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज है भावना, अपने आप में आत्मविश्वास रखना,
बिल्कुल
और
बिल्कुल
उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हर चीज के लिए फेथफुल होना। मतलब
जी
अगर चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रिश्ता हो, कुछ भी
जी
हो, उसके
बिल्कुल
लिए हमको पूरी तरह वफादार होना चाहिए। अगर हम किसी एक के प्रति वफादार नहीं है तो लाइफ में किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकते। और
अभी
हमको
आप जी
जो भी करे
जी
उसमें
बोले हाँ
अपना 100% देना चाहिए, जो भी करना है उसमें हंड्रेड
बिल्कुल।
परसेंट देना।
अभी मैम आपने अपने सीनियर का जिक्र किया कि आप उनको लेके जाती थी, तो
हाँ
जरूर उनके लिए आपके मन में सम्मान था, और आप ये सोचते होगे कि चलो ये नहीं जा पाते, मैं इनको ले जाऊं
हाँ
अपनी स्कूटर पे
एकदम एकदम
बैठाकर, है ना? और लेकिन उनके मन के भाव देखिए कि अगर हम किसी को बड़ा समझ के उसको सम्मान भी दे रहे हैं, तो अगर उनके मन में इस तरह की बातें हैं, तो फिर बड़े लोगों के प्रति हमारे मन में क्या सम्मान होगा?
एकदम मैं
हम साथ
उनकी
के लोगों के साथ
एकदम
जी
एकदम भावना, मैं उनकी बेटी के बराबर थी। उनको थोड़ा भी सेंस नहीं हुआ कि
बताइए
वो अपनी बीबी को क्या बोलते, इसका मतलब उनकी आइडेंटिटी क्या थी उनके घर में, उनकी बीबी की नजर में।
उनकी बीबी की नजर में भी, और उनका अपना मन कैसा था कि वो हमारे लिए अगर कोई फादर फिगर है और हम
हाँ
उसको उस नजर से सुनते हैं और प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसके बदले में वो हमको क्या मतलब इस नजर से देखेंगे? तो ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। साथ के लोगों के साथ आप बोलो तो वहां पर मतलब इसी तरह की बातें होती हैं, तो इंसान क्या कर रहे? ये तो बहुत बड़ी मतलब
बहुत
क्या
बड़ी।
कहा जाए इस चीज को।
मैं ये कहूंगी
जी
भावना की, देखिए महिलाएं जो होती है ना, सिर्फ महिलाओं में सिक्स सेंस होता है। सिक्स सेंस की
जी
बात की जाए,
बिल्कुल
सिर्फ महिलाओं में होता है। और कोई भी महिला किसी भी
जी
पुरुष को देख के, उसकी निगाह देख के समझ जाती है कि आखिर में वो चाहता क्या
जी
है।
जी
तो
बिल्कुल
बेहतर होता है कि हम उसको बड़े प्यार से बचा के निकल जाए, जब तक कि
बिल्कुल
वो
मैम
परिस्थिति नहीं आए कि फिर हम जूते चप्पल से बात करें।
जूते चप्पल से बात,
बिल्कुल, तो ये सब
क्योंकि
तो
सब लोग जूते चप्पल से कर भी नहीं
नहीं
सकेंगे
कर
मैम।
सकेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ। और तब हम लोगों के टाइम में इतना नहीं था, लेकिन आजकल तो इतना है कि 100 नंबर था, अब 112 नंबर है, जगह जगह पीसीआर गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि आप कहीं भी रहो, कोई भी प्रॉब्लम है आप फोन कर दो तो 10 मिनट के अंदर आपके पास जो है वो सहायता पहुंच जाएगी। अभी तो बहुत
जी
बहुत ही ज्यादा मतलब विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी कुछ हुआ है, और
जी जी
महिलाएं भी काफी सशक्त हो रही हैं आजकल हर जगह। मतलब उनके इम्पावरमेंट और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए सेमिनार हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हम लोग के टाइम में नहीं था ये सब, कुछ नहीं था।
जी बिल्कुल और आपने जैसा अभी कहा कि हमको खुद को भी सशक्त करना होगा, निर्भीकता लानी होगी, लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने से और इन सारी चीजों से बातें खाली बड़ी बड़ी हो रही हैं मैम, लेकिन उतना धरातल स्तर पर नहीं लगता कि हो पाती हैं
एकदम
चीजें।
नहीं भावना,
इस बारे में आप
हाँ एकदम
जी
कहूंगी
बताएं।
भावना। मैं जब इसमें थी इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग और महिला सम्मान प्रकोष्ठ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की
जी
निशी मैम और वहाँ पे मनोज सर जो वहाँ के वीसी थे अभी अवध यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने कई
जी
लड़कियों को
जी
मेरे पास भेजा था, जिसमें से उन लोग की इतनी प्रॉब्लम थी कि उन लोगों को ये फेसबुक के थ्रू ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो ऐसा नहीं होता है कि
बताइए
उसमें
मैम।
सिर्फ लड़कों की गलती होती है, लड़कियों की भी बहुत गलती होती है। देखिए, अगर हम
हाँ
फेसबुक
बिल्कुल
पे या
ठीक है।
सोशल मीडिया पे जाते हैं तो एक फोटो अगर सलमान खान की लगी है तो जरूरी नहीं है कि वो सलमान खान है, उसके पीछे कौन
बिल्कुल मैम।
है ये हम नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, हमको अपनी फोटो जो है हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, या अगले से हम कितने इंटीमेट हो रहे हैं, ये हमारी जो एक एक दायरा होता है, हमको दायरे में ही रह के काम करना चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता
बहुत
रही हूँ
अच्छी
भावना,
बात
कि जब मैंने इन सब में
जी।
इन्वेस्टिगेट किया और सब कुछ किया तो बता रही हूँ कि 25% लड़कियों की न्यूड फोटो लड़कों के मोबाइल में थी। और जब मैंने लड़कों लड़कियों से इस
बताइए
बारे में बात की कि ये क्यों है इन सब के दौरान, तो उन लोगों ने बोला कि हमको कहाँ गए थे, उसने कोल्ड ड्रिंक में मिला के हमको कुछ पिला दिया और हमारी फोटो ऐसे खींच ली, और उसके बाद वो ब्लैकमेल करके बोलता था कि तुम हमको अपनी फोटो ऐसे ऐसे खींच के भेजो नहीं तो मैं वो डाल दूंगा। तो ये बहुत गलत है कि आप
बता
किसी को इतना क्यों करिए। मैं एक
तुम्हें कुछ गोली खिलाकर उसने कैसे तुमको खिला,
हाँ
मतलब तुम इतना कैसे उसके पास गए कि उसने गोली खिला दी तुमको
एकदम यही
और ये सब
भावना
किया।
मैं बता रही हूँ। एक बार मैं अमेठी में एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ लेक्चर था, वहां पे लड़के लड़कियां सब थे। तो
जी
जैसे कि लड़कियों को होता है कि आजकल ठीक है लिव इन रिलेशनशिप का भी बहुत है और सब कुछ है, लेकिन एक लड़की को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी लड़की किसी लड़के को बहुत इजिली अवेलेबल हो जाती है तो कभी भी वो उससे लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए नहीं सोचेगा, वो यही सोचेगा कि हाँ
सम्मान घट
ये
जाता।
सबके लिए होगा। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे पास, प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इसलिए मैं सबको लड़कियों को बोलती हूँ कि एक दायरे में जो हमारे यहाँ बनाया गया था, लेकिन अभी तो मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे वो दीपिका पादुकोण का मेरी बॉडी मेरा लाइफ मेरा ये मेरा वो, तो उसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है कि जहाँ पे एक पक्ष ये है कि हम लोग कहें कि ऐसे हैं और बाकी लोग बोलें कि मतलब मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी स्टाइल में हूँ, मेरा ये है, तो बहुत सारी विडंबना है इस समाज में जिसको अभी खत्म होने की
ये
बहुत
बहुत बड़ी
जरूरत
बात है।
है। जी
बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब एकदम शो बिजनेस वाली चीज हो गई है हर चीज में, और बॉलीवुड के स्टार्स और इन सबको देखकर हम उनसे तुलना करके अगर चलने लगेंगे तो ये चीज तो बहुत ही
बहुत
मुश्किल है।
मुश्किल।
और इसमें घर वालों का भी शायद दोष होता है, लेकिन अपने को आगे
नहीं,
साबित करने के लिए कि हम
भावना
बहुत
कई बार मैंने देखा है,
जी मैम
ये वो मॉल है उसमें हम गए हैं तो
जी
कई बार देखा है कि पूरा सलवार कुर्ता पहन के या फिर वो बुरके में पहन के लड़कियां आई और वॉशरूम में जाके वहां से फिर दूसरी आउटफिट में बाहर निकलती हैं बैग में रख के, ये भी देखा है मैंने।
बताए
तो इसको क्या कहोगे, इसमें
जी।
हम खुद
बहुत
भी
मैं
जिम्मेदार नहीं है।
मेरे ख्याल से हमारा कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हो तो आपके इस इन बातों से बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा कि इस चीज को समझना चाहिए कि बाद में इस चीज को करने से बाद में दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा मैम। ये कोई अच्छा जीवन थोड़ी ना मिल पाएगा जितनी भी
एकदम
लड़कियां ऐसा करती हैं। आप फेसबुक वगैरह में कह रहे हो मैम कि फोटो की सलमान खान की जगह कोई, मैंने ये भी देखा सुना है कि लड़कियों के प्रोफाइल बने
हाँ,
रहते हैं और
एक
उस पे कर रहे होते हैं
लड़के
लड़के
होते हैं और वो लड़कियों की
जी
प्रोफाइल बना के, इसीलिए मैं बोल रही हूँ।
जी बिल्कुल।
और कभी कभी आपको पता है
साइबर
ऐसे
क्राइम की
मैसेज भी
जगह
आते हैं कि अगर कोई मिस कॉल आ गई, उस मिस कॉल पे इतना संबंध बढ़ जाता है कि पूरी आत्मीयता और पूरा प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है।
बताइए।
और लास्ट में फिर
आपने तो
हाँ,
देखा
लास्ट में फिर यही होता है
जी।
कि वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, उन्होंने इतनी बात की, और जब मिलने के बाद कभी सामने, एकदम अनपढ़ गवार, ये पढ़ने वाली लड़की, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई मिस कॉल आती है तो आप सीधे बस रॉन्ग नंबर कैसे रख दीजिए ना, कहाँ से आप बोल रहे हैं कि आपने किसको फोन मिलाया, क्यों मिलाया, मतलब बात बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस गलत नंबर से मिस कॉल आया है, आप एकदम कट कर दीजिए कि रॉन्ग नंबर पे।
और मैम ये सोशल मीडिया के लिए आप क्या कहेंगी कि फेसबुक और इन सब चीजों से, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब चीजों से लोग जुड़ जाती हैं लड़कियां भी, और उसमें ऐसे मैसेजिंग होने लगती है, तो उसके लिए आप क्या
मैं
कहोगे?
यही कहूंगी कि देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है अगर आप अच्छा सोचे। देखिए, कई चीज के भावना, मैं एक चीज कहूंगी कि लोग बोलते थे, जैसे बचपन में हम लोग को बोला जाता था कि उपन्यास पढ़ना बहुत खराब बात है, सिर्फ इसलिए कि उपन्यास
जी
में प्यार मोहब्बत और ये सब जो भी दिखाता था, लेकिन उसका अंत जो होता था ना, वो सोचने पे
जी
मजबूर करता था कि किसी भी चीज का अंत क्या है। आपको एक चीज बताऊं, अगर शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा या सोनी महिवाल, ये प्यार के किस्से और ये सब इसलिए इतने हाइलाइटेड और अमर बने हुए हैं कि सारे के सारे मर गए। अगर वो जिंदा होते और उनकी शादी हो
जी
जाती ना, तो वही आटे दाल का भाव पता चलता, और वही घर घर में जो लड़ाई होती है वही उनमें भी होती, कोई कहानी नहीं बनती।
बिल्कुल ठीक कहती
तो लड़कियों को ये लगता है ना कि प्यार
जी
बहुत बड़ी चीज है,
जी
और अगर ऐसा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के वो प्यार में एकदम मोह होके अगर घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती है, तो कुछ दिन बाद उनको रियलाइज होने लगता है और उसका बड़ा दुखद परिणाम होता है।
अभी तो ये देखो मैम, अब ये 14 फरवरी आएगा तो वैलेंटाइंस डे आएगा, इसमें यही सब शुरू हो जाएगा। और जबकि वैलेंटाइन कहते हैं संत हैं, और उनके संत के ऊपर ये चीज पड़ी, तो प्रेम तो किसी के प्रति भी हो सकता है, हमारे माता पिता के प्रति, किसी रिश्तेदार के प्रति, भाई बहन के प्रति, दोस्त के प्रति। मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस मैम, कि मेरे एक चाचा हैं और उनकी मतलब कुछ साल पहले वो नहीं रहे इस दुनिया में, और मेरे ऊपर उनका इतना प्रभाव है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ मतलब जैसे मुझे उनसे ही प्रेरणा मिलती है, नहीं होकर भी लगता है कि वो मेरे साथ, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, एकदम छोटे बच्चे की तरह करते थे। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई थी, यहाँ मैं हॉस्टल में थी, वो आते थे मुझे मिलने, तो मतलब मेरे पापा मम्मी की तरह ही वो मुझे प्यार करते थे, मुझे कहीं से नहीं लगता था मेरे चाचा, तो मेरे ऊपर उनका इतना प्रभाव है। मेरे बड़े मामा थे, वो राइटिंग के बहुत शौकीन थे, और उन्होंने वो रशिया जाकर एक साल रहे थे, और उन्होंने टॉलस्टॉय के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसकी भूमिका उस समय भगवती चरण
अरे
वर्मा जी ने लिखी
वाह,
थी। तो उनका भी मेरे ऊपर इतना प्रभाव है मैम कि उन्होंने अपनी मतलब हजारों किताबें मुझे देकर रखी हैं, और वो अपने बच्चों को, नहीं उनको, उनके बच्चों को इतना शौक था लिखने पढ़ने का, तो वो मुझे हमेशा किताबें देते थे और यही कहते थे कि नहीं तुमको पढ़ना है और कुछ करना। तो आज मैं थोड़ा बहुत जो भी लेखन का कर पाती हूँ अपने पापा, अपने मामा और इन चाचा की वजह से, और वो मामा और चाचा इस दुनिया में नहीं, फिर भी शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं उनको करती हूँ। तो कहीं से भी प्यार को आप किसी एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के उसमें बांध के नहीं दायरे में रख सकते हो, लेकिन आजकल यही सब हो रहा है, तो ये सब भी बहुत बड़ी विडंबना
एकदम
है
भावना।
मैम।
एक चीज बताइए, आपके चाचा और मामा नहीं है, ठीक है? आपने भगवान को कभी देखा
जी
है?
जी बिल्कुल
नहीं देखा
नहीं,
है?
बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और सबसे ज्यादा हम भगवान
एकदम
विश्वास
विश्वास
और
करते
प्यार
हैं,
करते हैं
और इसलिए कि वो हमारे अंदर
जी,
है, समझ में आई? जो हमारा
बिल्कुल
कॉन्फिडेंस है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भगवान है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन भगवान हमारे अंदर है। तो किसी भी चीज को महसूस करने
जी
के लिए दिल से, वो अपने आप उसके प्रति रिस्पेक्ट आती है। तो उन्होंने इतना किया और किया, और मैं सबसे, आपने भगवती चरण वर्मा की बात कही है, तो जो भगवती चरण
जी
वर्मा की दो बहुत अच्छी किताबें हैं, चित्रलेखा और रेखा, तो अगर रेखा को पढ़ लेना
जी
तो वो लड़कियों के, जो आजकल की लड़कियों में प्यार और इन्फ्लेक्चुएशन का जो समझ में नहीं आता है ना, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से रेखा में उन्होंने लिखा है, और उसका अंत भी लिखा है।
जी
बहुत अच्छी किताब है भावना,
चलिए मैं पढ़ूंगी, चित्रलेखा तो पढ़ी लेकिन
रेखा
रेखा नहीं
रेखा
पढ़ी,
पढ़िए,
जरूर
रेखा
पढ़ूंगी दीदी। और
एकदम, मतलब जो समाज में होता है, और एक लड़की जो है इमेच्योर लड़की, मतलब किस तरह से उसमें देता है ना कि एक प्रोफेसर है जो कि उससे बाप से भी बड़ा है,
जी
और क्योंकि वो पढ़ाता है तो मतलब उसकी ओर वो आकर्षित होती है किस तरह से, और पूरी लाइफ डवाडोल हो जाती है दोनों की। मत बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा
जी
बहुत होता है। आपने वो हाँ बिहार का वो जूली और मास्टर वो मंटुआ देखा होगा ना,
जी
एकदम
प्रोफेसर जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही आपके वाली बात कि उसको किस रूप में हम लेकर और कैसे उसको रिश्तों में बदलते, ये चीज
मायने।
मायने रखती है, और इसमें बड़ों का भी योगदान
जी
होता है।
जी कि हम
जी जी
किसी भी
भगवती चरण वर्मा जी, इन लोगों को पढ़ना तो अपने आप में, बहुत मनोवैज्ञानिक
एकदम
राइटर
एकदम
थे ये लोग और इनकी
जी
रचना में। और लेकिन हम लोग वाकई में साहित्य से मैम दूर आ चुके हैं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ेंगे तो
आजकल
बस
मोबाइल
यही सब, तो सोशल मीडिया में भी यही सब
मोबाइल
आजकल।
ने सब कुछ मार के रख दिया है, हमारी चिट्ठी पत्री, हमारे संवाद, सब कुछ एक राक्षस की तरह सुरसा।
हाँ, चिट्ठी पत्री की बात आई
हमने कहा
जी, चिट्ठी
सुरसा।
सुरसा, बिल्कुल। अब चिट्ठी पत्री की बात की है मैम, तो आपकी किताबों की बात आ जाए। आपने अब लेखन में अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और आपकी 4 किताबें पब्लिश हुई हैं, और इनके बारे में मैं जानना चाहूंगी। शायद आपने कुछ पत्रों के ऊपर
नहीं
भी
नहीं
लिखा है।
भावना, वो पत्र नहीं है, वो मतलब अपने जैसे संस्मरण
जी
कहा जाए जो लाइफ में गुजरा है, अनाम पाँतियाँ उसमें वो सब लिखा है
जी
जिसके कहीं ना कहीं बहुत करीब रही हूं
जी
मैं।
जी
और चिट्ठियां जो है वो एक
अच्छा,
हाइकू, हाइकू एक वो
हाइकू
जापान
जी,
की विधा है कविता की, जिसमें कि 3 लाइन में ही एक पूरी कविता हो जाती है, और उसके जो अक्षर होते हैं वो बाउंडेशन होती है कि 17 अक्षर होने चाहिए, पहली लाइन में 5, दूसरी में 7 और तीसरी
अच्छा
में 5, बस इतने में ही कविता पूरी हो जाती है, तो वो लिखा है मैंने। और एक गीत और गजल की है मेरी
जी
अग्निवीड़ा, और एक किताब है जो कि
जी
भारतीय कानून में महिलाओं के अधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है।
ये आपकी बहुत बहुत
हाँ,
चर्चित रही
इसलिए
है मैम आपकी ये
भावना की
किताब।
जैसे
जी
बोलते हैं ना कि हम लोग सोचते थे सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलके कि एक प्लेटफॉर्म जो होता है बिफोर ट्रायल होना चाहिए। बिफोर ट्रायल इसलिए कि मान लीजिए कि आपके
जी
पेट में दर्द हो रहा है तो आप सर दर्द की दवा खाएंगी तो पेट दर्द नहीं सही होगा, तो सबसे पहले तो
हाँ
किसी भी चीज की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको मान लीजिए कोई लड़का परेशान कर रहा है उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना है, या आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं उसके लिए क्या एक्शन लेना है, आपके ऑफिस में आपका बॉस या कुलीग परेशान कर रहा है उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं, तो इन सब चीजों के लिए, या घर में कोई डाउरी के लिए परेशान कर रहा है किसी भी चीज के लिए, तो महिलाओं से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, इवन 3 तलाक तक का पूरा मैंने उसमें बहुत ही इजी वे में लिखा है कि अगर वो किसी भी महिला या लड़की के पास होगा तो आप ये सोचिए कि उसको कोई भी वकील, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, उसको अपने अधिकार के
जी
की पूरी जानकारी हो जाएगी उस किताब को पढ़ने से।
और मेन दिक्कत यही आती है कि हमें अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता, मुख्य रूप से परेशानी
एकदम
हर
नहीं
नागरिक
होता
की
भावना,
कह
और
लीजिए
आप
यही है,
वकील के यहाँ जाते हैं
महिलाओं की तो।
आपकी बात आधे पन्ने की होती है और वो आपको 5 पन्ने का एप्लीकेशन टाइप कर देते हैं, और जो मैटर मेन प्रॉब्लम होती है वो कहीं आता ही नहीं है, और जो वो डाल देते हैं उसको लेके महिलाएं बेचारी पेशी दर पेशी भागती हैं और थक हार के बैठ जाती हैं।
और मैम मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोग हैं, कोई भी आम नागरिक और खासकर लड़कियां महिलाएं, तो पुलिस के पास जाने में सब एक थोड़ा हिचकते हैं, कह लो डरते हैं, FIR लिखी जाती, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं,
एकदम
जटिल होती हैं
भावना,
हमारे यहाँ। इसके
एकदम
बारे में आप
मैं
क्या
बोल रही हूँ
कहोगे?
कि ये इसके बारे में मैंने पूरा किताब में लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाला आपको थाने पे नहीं बुला सकता
जी
है, अगर मतलब आप महिला हैं आपको उनका
अच्छा
स्टेटमेंट लेना है तो वो किसी कोई महिला ही आपसे स्टेटमेंट लेगी, और अगर आप नहीं आना चाहेंगे थाने तो वो आपके घर आएंगे, आपको या जहां पे आपको कन्वीनियंट लगेगा वहां पे जाएंगे, आपको थाने नहीं बुला सकते। और अगर
अच्छा ये सुविधा है
एकदम
कि
है
ऑनलाइन
एकदम,
आ
वही
जाए।
मैं बोल रही हूँ कि ये आपके अधिकार हैं जो पता होने चाहिए। दूसरी, आपकी FIR लार्ज होनी मस्ट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी कभी ये भी होता है कि कोई महिला है, उसकी शादी हो गई वहां गोंडा में हो गई या प्रतापगढ़ में हो गई, वहां पे उसके हस्बैंड ने मारपीट के उसको निकाल दिया, रहने वाली लखनऊ की है, लखनऊ में आई, तो कभी कभी ये बात होती है कि घटना स्थल जो है वो प्रतापगढ़ या गोंडा का है तो वहां पे लिखा जाएगा FIR। ऐसा नहीं है, एक जीरो FIR होती है जो कि
जी
आप जहां पे हैं वर्तमान में वहां पे लिखनी पड़ेगी, और भले ही वो लिख के फिर वहां पे रिलेटेड थाने को भेजेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप परेशान नहीं होंगे कि फिर आप वहां जाइए तभी लिखा जाएगा, और बहुत सारे लोग डर के मारे जाते नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो हमको मार डालेंगे, तो ये सब चीजें थी।
बिल्कुल बहुत
हाँ
बिल्कुल डर होता है मैम, इस चीज का तो डर हर
नहीं, तो
इंसान
यही है,
नागरिक
उसमें
के अंदर
सारा
है
है भावना।
बिल्कुल बहुत।
और कभी जब भी जरूरत पड़ी
जी
तो नेक्स्ट टाइम, तो मैं अगर आपके कुछ मतलब क्राइम से रिलेटेड जैसे कुछ टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं बताऊं भी भी कि हाँ इसमें है, अगर इसमें तो क्या करना चाहिए, और ऐसे है तो कभी नेक्स्ट टाइम उस पे भी हम बात करेंगे।
बिल्कुल, बल्कि मैं सोचती हूँ कि महिला दिवस अब आएगा मार्च में, 8 मार्च को, तो उसके आसपास आपको जरूर बुलाऊंगी और अपने श्रोताओं से भी
हाँ
कहूंगी कि कुछ प्रश्न हो
एकदम
तो वो मुझे लिखकर भेजें, फिर उन प्रश्नों से और कुछ श्रोताओं को भी हम बुलाकर कार्यक्रम में आपके साथ
एकदम
जरूर एक संवाद होगा इस चीज को।
एकदम,
हमें मतलब मैं भी नहीं
हाँ
जानती
भावना
इन सारी
एकदम
सारी
एकदम,
चीजों को, हम लोग तो यही कोई बात होती है तो यही पता होता है कि हमको थाने जाना पड़ जाएगा, FIR करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपने बताई, वो जो जीरो FIR वाली बात बताई, तो ये सारी चीजें तो बहुत ही मतलब दांव
नहीं
पेच वाली,
एकदम
हम
है,
लोग को नहीं
आप
पता है
ऑनलाइन
मैम।
भी वो कर सकते हो FIR, बहुत कुछ है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस पे जब भी होगा तो जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे
बिल्कुल
जिनके वो
करेंगे
आप
मैम,
करिएगा, मैं पूरा बताऊंगी भावना।
बिल्कुल। और मैम और कुछ बताना चाहें आप, और मतलब इधर आप जो कर रहे हो काउंसलिंग का भी काम करते
एकदम
हो
एकदम
विद्यार्थियों के
भावना,
लिए
मैं
खासकर,
ये चाहती हूँ कि
उसके बारे
कोई
में
भी
कुछ
लड़की हो या लड़का हो या महिला हो, अगर वो डिप्रेशन में है या उसको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है जीने के लिए और वो हताश है, तो मैं चाहूंगी कि वो एक बार मुझे जरूर फोन करे और मुझसे जरूर बात करे या मिले। मैं एकदम ये
जी
प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसमें से उसको बाहर निकालूंगी, और ये जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है और बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। हम इसको
वाह
किसी और के लिए क्यों खत्म करें? आप ये बताइए, हम उसके लिए अपनी
बिल्कुल
जिंदगी
ठीक
खत्म कर देते हैं जो हमारे प्यार को, हमारे जज्बात को नहीं समझता है, तो कम से कम उसके लिए इसको सुरक्षित रखे ना जो मुझे बहुत प्यार करता है, जैसे हमारे माँ बाप भाई बहन।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हूँ
तो
मैम, जो हमें जिसके लिए हमारी कोई महत्व ही नहीं, उसके लिए हम खत्म कर रहे हैं जीवन,
हम
और जो हम
सोचते
पर
नहीं है, तो
मरते
ये
उनके लिए हम
सोचने की
सोच नहीं
बात
रहे।
है बस। जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा, कभी
जी
कोई भी मतलब हारेगा नहीं।
आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो आपसे मिल लेगा वो एक बार तो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं ऐसा विचार भी क्यों
हाँ
ला रहा हूं
एकदम
आत्महत्या
एकदम,
के या किसी
तभी तो
चीज
मैं
का।
कह रही हूँ कि कोई भी होगा तो मैं चाहती
कोई
हूँ
मैम
कि कोई परेशान हो तो आप मुझे उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, वो मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं भावना।
बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैम कुछ और अपना अनुभव बताना चाहें आप।
नहीं मतलब बहुत सारे अनुभव है भावना, मैंने बहुत सारी लड़कियों को, कई जो दो दो साल से घरों में बंद थी, और ये ऑनर किलिंग का मामला मेरठ से, और बहुत लड़कियों को मैंने मतलब रेस्क्यू किया है। कई बार तो लखनऊ में बहुत बड़े घर की
जी
बहराइच से बहन ने डांट दिया, वो लड़की झोला वोला लेके अपना टीनेजर लड़की चली आई कि नौकरी करेंगे, वहां पे स्टेशन पे जो बच्चे हैं वो उसको छेड़ रहे थे, उससे उल्टी सीधी बातें कर रहे, वहां से मुझे फोन आया, फिर मैं जाके उस लड़की को लेके आई, लेके आके फिर मैंने वो अरे जो चाइल्ड लाइन में है, अंशुमाली जी, संगीता जी, उन लोगों से
जी
बात
जी
करके अपने घर में रह के उसके घर भिजवाया। और भी कई लड़कियां हैं जो मुझे सड़क पे मिली या ऐसे आई, मैं उनको अपने घर पे ले आई, वहां पे घर पे रखा, और रखने के बाद वही चाइल्ड लाइन से बात करके उन लोग को बुला के उनके पेरेंट्स को उनके सुपुर्द किया। और
जी
अभी भी कोई बहुत
आपने अभी
परेशान हो,
बात की थी।
किसी का कहीं कुछ नहीं
हाँ जी
होता है,
बोले
किसी
मैम।
को कोई मार दे, घर से निकाल दे, कुछ नहीं है, तो मेरा घर हमेशा सबके लिए खुला रहता है, जब तक कि उनकी व्यवस्था नहीं हो जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी रहती है।
बहुत बड़ी बात है मैम। सब ये तो वाकई हम लोग जानते हैं आपको, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि आप कितना कुछ कर रहे हो समाज के लिए। और अभी
जी
आपने
जी
मैम जिक्र किया था निशी
हाँ
पांडे मैम का, लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो हम यहाँ पे हॉस्टल में थे तो वो हमारी वार्डन थी उस समय, तो उनका भी एक अलग तरह का व्यक्तित्व है। और वो भी काफी मतलब थोड़ा अलग टाइप का है उनका
बहुत
व्यक्तित्व,
बहुत।
लेकिन
वो
उनसे
हम
भी
लोग
बहुत
तो
प्रेरणा
पुलिस में
मिलती है
इधर हैं,
ऐसे लोगों।
लखनऊ यूनिवर्सिटी का
जी
उनको कहा जाता था कि वो दरोगा है वहां की।
बिल्कुल दरोगा मैम, हमारी वार्डन थी तो हमें इतनी डांट पड़ती थी उनसे, और किस किस तरह की बातों पे पड़ती थी, आप सुनोगे तो हंसोगे। कि एक आध बार ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे हैं तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो अब मेस में जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो भाई ऐसे ही कपड़े पहने में कुछ भी पहन लिया और चले गए, तो वो थोड़ा ऐसी ही बनी हुई थी, तो उसको बुलाकर कहती है इधर आओ, फिर कह रही है तुम क्या बनी हुई हो, तुमको कोई देखेगा भी नहीं, तुम इस तरह से, मतलब उसको इतनी डांट पड़ गई किस बात पे कि तुम कैसे बने हुए हो। तो हमेशा ये कहती थी कि नहीं, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, ठीक से बन के रहना है तुमको, मतलब अपने व्यक्तित्व को निखारने की बात जहां तक है। और काम भी देखिए वो कितने करती हैं, बहुत। उन्होंने खाली यही नहीं कि
थैंक
आपके वाली
यू।
बात की
एक
कपड़े लत्ते पहन लिया और
बहुत
उनसे
एक
कुछ
लड़की
बन
का
लिया, उन्होंने
मैटर
किया भी
था
बहुत
वहीं
कुछ
पे,
है। जी
जिसमें कि निधि मैम ने भी अपने
जी
यहाँ
जी
से इंक्वायरी की थी और मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। मतलब वो एकदम खड़ी रही, बहुत ऊंचे
जी
लेवल का था, लेकिन मैम एकदम खड़ी रही
अच्छा
और मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला कि हाँ है। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से काफी उस लड़की को, हम
बिल्कुल
लोग मतलब उस लड़की को पूरा जस्टिस मिला, हम लोग दिए। अब तो वो खुश है, कभी कभी फोन करती है।
असली मायनों में बोल्ड होना क्या है, वो आप हैं निशी पांडे मैम हैं, इन
नहीं
लोगों
नहीं
को देख
भावना
के
आप भी है
मिसाल
अपने फील्ड
मिलती है,
में,
ये बात
ऐसा
तो
कुछ
है।
भी नहीं है,
नहीं मैम, मेरे
एकदम
को भी
नहीं।
कुछ,
आप इतने
मैम
लोगों
मुझे
तक हम लोग की
बोलिए अभी
बातें
कुछ
पहुंचा रही हैं, आप माध्यम हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है।
आप लोगों से ही
हमेशा
सीख रही हूँ
हमेशा
मैम, आप लोगों का
हमेशा
आशीर्वाद है,
रहेगा
बस
साथ,
साथ मिलते। जी बिल्कुल,
एकदम
आपका तो साथ
एकदम
हमेशा हमें
हमेशा।
चाहिए, आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा, मुझे पता आप लखनऊ में भी नहीं थे, बाहर थे, फिर भी आपने टाइम दिया आज। और लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछने हैं, अभी तो पहली बार हम आप अपने कार्यक्रम में आपको लाए हैं, और अगली बार मैं चाहूंगी कि अपने श्रोताओं से भी प्रश्न लूं, और बल्कि कुछ लोग अगर शामिल होना भी चाहें तो उनको भी करूं मैम। तो आज के लिए तो आपको बहुत बहुत आभार, और
थैंक
बहुत
यू
जल्दी फिर
भावना,
हम आपको
थैंक यू,
मिला
ढेर सारा
बुलाएंगे मैम
प्यार
अपने
और
कार्यक्रम में।
शुभकामनाएं।
थैंक यू मैम,
हाँ, एकदम
थैंक यू
बड़ी
दीदी,
बहन हूँ और
सबकी
बड़ी
दीदी हो,
बहन की
मेरी
तरह हक
दीदी
से
हो
कुछ
आप।
भी कह सकती हो,
बिल्कुल
कभी भी हमेशा एक बड़ी बहन की तरह रहूंगी किसी भी
मैम,
जरूरत में,
बिल्कुल
चाहे वो किसी तरह की थी।
बिल्कुल, आपका कहना मेरे लिए
नहीं
एक बहुत बड़ी बात हो गई मैम,
एकदम,
बहुत
हाँ
बड़ी बात, आपका
ओके
आशीर्वाद है
भावना,
बस।
ओके, ऑल दी बेस्ट।
ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम।